हरे कृष्णा। तो आज एकादशी के उपलक्षे आपके परंपरा के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से पाठ। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पेज 56। बम्बई जनवरी 26, 1972। बम्बई लौटने पर प्रभुपाद को यह जानकर निराशा हुई कि भक्तों ने न तो श्रीमान एन को भुगतान किया था और न ही वे जुहू के भूमिखंड में गए थे। मधुदीश स्वामी ने, जिसे प्रभुपाद ने यह काम सौंपा था, ऐसी कठिन योजना का दायित्व लेने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता स्वीकार की। जिस शिष्य को प्रभुपाद ने पहले पहल इस मामले को सुलझाने के लिए भेजा था, वे थे तामल कृष्ण महाराज। किंतु चूंकि अब उन्होंने संन्यास ले लिया था, इसलिए उन्होंने अपने जीबीसी कर्तव्य का त्याग कर दिया था और यात्रा और प्रचार में लग गए थे। इस तरह मुंबई में कोई प्रबंधक नहीं रह गया था। प्रभुपाद ने यूं भी व्यवस्था का अधिकांश कार्य स्वयं देख रहे थे, किंतु वे हर काम तो नहीं कर सकते थे और मुंबई में लगातार नहीं रह सकते थे। पता नहीं चूज करके ये पेज रखे हैं कि आपका क्रम अनुसार यही आया है। तब मुंबई में बम्बई की लीला है। 1972 में प्रभुपाद जी ने जब बम्बई पहुंचे इस धरती पर, तो प्रभुपाद को पता चला कि जो डिलिंग्स श्रीमन एन, जो ये भूमिखंड के तथाकथित मालिक थे, तो उनके साथ जो जिस प्रकार से भुगतान व्यवहार करना था नहीं किए गए हैं, तो इसलिए बहुत उनको निराशा हुई। कहते हैं कि मधुदीश स्वामी ने, जिसे प्रभुपाद ने काम सौंपा था, जबकि इसके पहले तमाल कृष्ण गोस्वामी को ये काम दिए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिए और अपने मैनेजमेंट से संन्यास लेकर के उन्हें प्रचार में लग गए, और प्रभुपाद जी ने फिर मधुदीश स्वामी को ये काम दिए थे और स्वयं भी काम देख रहे थे। जुहू का प्रबंध देखने के लिए एक अनुभवी शिष्य के विषय में सोचते हुए प्रभुपाद को ब्रह्मानंद स्वामी का ध्यान आया, जो अभी अभी नारी में प्रचार और धर्म उपदेश कर रहे थे। प्रभुपाद जी की देखे कि यहाँ कोई जानकार व्यक्ति को रखना चाहिए बम्बई के कार्यभार संभालने के लिए, तो उन्हें चुने श्री ब्रह्मानंद स्वामी को, जिन्होंने अफ्रीका में नैरोबी में प्रचार कर रहे थे। प्रभुपाद ने वायुयान से अफ्रीका जाने और ब्रह्मानंद स्वामी को बम्बई आकर वहां के मामले देखने हेतु आमंत्रण देने का निर्णय लिया। वे इसे शीघ्र करना चाहते थे ताकि इस्कन भूमि पर कब्जा ले सके। यदि श्रीमान एन का मन बाद में बदल भी जाता है, तो एक बार भक्तों का भूमि पर रहना शुरू हो जाने पर उन्हें वहां से निकाल देना उनके लिए बहुत कठिन होगा। तो प्रभुपाद जी ने किसी प्रकार से इस जमीन को प्राप्त करना चाहते थे। जब भी जो भूमि के तथाकथित मालिक थे, वो बड़े षड्यंत्री थे, बड़े कपटपूर्ण काम कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी को पता चल गया था कि उन्होंने किसी प्रकार से ये मामला को कैंसिल करके फिर जमीन हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी किसी प्रकार से जमीन को लेकर के दखल करके उसमें भक्त लोगों को रख देना चाहते थे। अगर डिबूट लोग रह जाएं, तो फिर उन्हें निकाल देना इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद ने तुरंत हवाई जहाज द्वारा नैरोबी पहुंचने की योजना बनाई और वे अपने साथ राधा कृष्ण के विशाल विग्रह को भी ले जाना चाहते थे, जो विग्रह उन्होंने पहले नैरोबी भेजे थे। वे जहाज में टूट गए थे, इसलिए इस बार प्रभुपाद ने अपने साथ हट्टे कट्टे शरीर वाले मधुदीश स्वामी को ले गए। जो 36 इंच वाले संगमरमर के विग्रह को उठा सकें। विमान सेवा के अधिकारियों की विशेष अनुमति से प्रभुपाद वायुयान में चढ़े। उनके पीछे मधुदीप स्वामी थे और अपनी बाहों में 100 पाउंड का कृष्ण का विग्रह लिए थे। कृष्ण को वायुयान में प्रभुपाद की सीट की बगल में रखकर महदेश नीचे उतरे और राधारानी को लेकर लौट आए। तभी ये एयरप्लेन का ये नियम आजकल जैसा नहीं था, आजकल होता तो संभव ही नहीं होता था। 100 पाउंड का एक डीटी, फिर और एक डीटी आपने हाथ से उठा करके प्लेन के इनसाइड सीट के बगल में रखना। उड्डान का अधिकांश समय प्रभुपाद ने मधुदीक्षित स्वामी से विवाद करने में बिताया, जिन्होंने निर्विवेकता की भूमिका निभाई। प्रभुपाद उन्हें हमेशा मात देते गए। उन्होंने कहा, प्रचारक इसी तरह बना जाता है, आपको तर्क के दोनों पहलुओं को समझना होगा और तभी आप अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। महाप्रभु चैतन्य यही करते थे। 4 मास पूर्व प्रभुपाद जी ने मधुदेव स्वामी को साथ में लेकर गए डीटी कैरियर बना करके, लेकिन पास में बैठा करके इसमें देखा कि केवल उनके साथ विवाद करते रहे, उनके साथ झगड़ा करते हुए उनको सिखाए कि कैसे दूसरे के साथ युक्ति तर्क करके प्रचार करना होता है, ये ट्रेनिंग दे रहे थे। 4 मास पूर्व प्रभुपाद की नैरोबी की पहली यात्रा के बाद ब्रह्मानंद स्वामी और कुछ अमेरिकी शिष्यों ने नगर के निकट एक मकान किराए पर ले रखा था। उन्होंने कुछ अफ्रीकी शिष्य बनाए थे, लेकिन अभी तक वे मंदिर और आश्रम स्थापित नहीं कर पाए थे। वे केवल अपना सीधा साधा कार्यक्रम किसी तरह चला रहे थे, इसलिए प्रभुपाद के समुचित स्वागत के लिए वे तैयार नहीं थे। तो अफ्रीका में 4 महीना पहले सेंटर बना था, तो प्रभुपाद 4 महीने पहले विजिट कर रहे हैं, तो कुछ अफ्रीकी शिष्य थे, उन लोगों को पता ही नहीं था किस प्रकार गुरुजी के साथ डीलिंग करना होता है, उनको स्वागत करना, तो इसलिए कोई नहीं था स्वागत करने के लिए। नैरोबी में प्रभुपाद के अधिवास की तरह उनका वहां पहुंचना भी निराला था। उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर कोई मस्जिद नहीं था। भक्तों को यह भी निश्चित पता नहीं था कि प्रभुपाद आ रहे हैं। प्रभुपाद के सचिव ने ब्रह्मानंद स्वामी को फोन किया था कि प्रभुपाद केनिया जाना चाहते हैं और यह कि ब्रह्मानंद स्वामी को राष्ट्रपति से उनकी भेंट कराने और पंडाल उत्सव का कार्यक्रम तय करने का प्रयत्न करना चाहिए, किंतु ब्रह्मानंद स्वामी को यह स्पष्ट संदेश प्राप्त नहीं हुआ था कि प्रभुपाद नैरोबी कब आ रहे हैं। हवाई अड्डे पर प्रभुपाद और मधुदीप स्वामी ने राधा कृष्ण विग्रह को सावधानी पूर्वक एक टैक्सी में रखा और उनके साथ वे इस्कन केंद्र पर जा पहुंचे। प्रभुपाद ने घंटी बजाई और जब ब्रह्मानंद स्वामी ने दरवाजा खोला और अपने आध्यात्मिक गुरु को देखा तो वे चिल्ला उठे, प्रभुपाद, और नतमस्तक हो गए। तभी जमाने में तो मोबाइल फोन था नहीं, इतने हाईटेक था नहीं, वो वाला फोन में करते होंगे डायल करके, उसमें ठीक से सुनाई नहीं पड़ा होगा उनको, तो उनको पता नहीं था कि प्रभुपाद जा रहे हैं। तो उनको आश्चर्य में डालते हुए प्रभुपाद जी ने स्वयं कलिंग बेल बजा करके उनको सूचना दिए। राधा और कृष्ण की बगल में खड़े हुए प्रभुपाद ने पूछा, क्या हो गया था, हम लोगों को लेने के लिए हवाई अड्डा पर कोई क्यों नहीं आया। ब्रह्मानंद स्वामी उत्तर देने में असमर्थ थे। प्रभुपाद के पहुंचते ही उनके सहायक मधुदीप स्वामी जकृत रोग से बिस्तर पर पड़ गए। जकृत रोग पीलिया हो गया सर। प्रभुपाद ने अपने नियमित सचिव श्याम सुंदर को भारत में मायापुर की भूमि के एक कानूनी मामले को देखने के लिए वहीं छोड़ दिया था, इसलिए अब वे बिना व्यक्तिगत सहायक हो गए थे। प्रभुपाद जी उसी जमाने में जब हर जगह में पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए उन्होंने शुरू किए तो कितने कष्ट उठाए। यहाँ आकर भाग के आए, यहाँ कोई आदमी नहीं था दूसरे को बुलाने के लिए, जिसको केनिया में अपॉइंटमेंट के थे उनको यहाँ करना था, उनको यहाँ करना था, ऐसे करके कभी कभी जाते थे कोई उनको रिसीव करने के लिए नहीं आते थे, अकेले विग्रह लेकर जाते थे, कभी कभी सेक्रेटरी उनके साथ नहीं रहते थे, ऐसे ऐसे समस्या आता था, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, कोई और परेशानी, जो जो थोड़ा समझदार है उनको ही भेज देते थे। बहुत थोड़े बहुत समझदार शिष्य हुआ करते थे। प्रभुपाद के पहुंचते ही उनके सहायक मधुदेव स्वामी जी अच्छा नैरोबी में प्रभुपाद ने अपराह्न में स्नान करने का अपना नियम बनाए रखा था। उसके बाद वे धुले कपड़े पहने थे, किंतु एक दिन स्नान करने के बाद उन्हें पता चला कि कपड़े तैयार नहीं है। जब उन्होंने उनके बारे में पूछा तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि अफ्रीकी नौकर ने कपड़े धोकर सूखने के लिए रस्सी पर डाल दिए थे, लेकिन जब ब्रह्मानंद स्वामी उन्हें लेने गए तो कपड़े वहां नहीं थे। अब अंदाजा लगा सकते हैं, प्रभुपाद जी कपड़ा धोकर सुखाया तो कपड़ा किन्ने उठा लिया मंदिर में। लगता है कि किसी ने रस्सी से कपड़ा चुरा लिए थे। प्रभुपाद ने बिना कोई भाव जताए इस असुविधा को झेल लिया। उस शाम को जब भक्तगण प्रभुपाद का भगवद गीता पर व्याख्यान सुनने के लिए नैरोबी के इस्कन केंद्र में इकट्ठे हुए तो प्रभुपाद ने देखा कि उनके चुराए गए कपड़े अफ्रीकी लड़के ने पहने हुए थे। प्रभुपाद जी ने 4 बजे स्नान करके आए, आकर देखते हैं कि कपड़ा ही नहीं है। कपड़ा नहीं था, जैसे पता नहीं कैसे एडजस्ट करके और कपड़ा पहने होंगे। दूसरा कपड़ा पहन करके जब क्लास में बैठे देखते हैं कि उनके कपड़ा पहन करके दूसरे बैठे हैं अफ्रीकी शिष्य ने। एक लड़के ने कुर्ता पहन रखा था और एक शिरो वस्त्र धारण कर रखा था, अच्छा दो की थे पहने थे, जबकि तीसरे ने प्रभुपाद की धोती पहन रखी थी। तीनों ने 3 पीस ले लिए थे। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को ध्यान उधर दिलाया। ब्रह्मानंद स्वामी बोले, देखो ये आपके निभक्त हैं, ये मेरे कपड़ा को लेकर पहन चुके। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी का ध्यान दिलाया, वे लड़कों को तुरंत बाहर ले आए और सभी कपड़े उनसे उतरवा लिए। जब ब्रह्मानंद स्वामी ने कपड़े प्रभुपाद को दिया तो उन्होंने इसे एक गंभीर अपराध के रूप में नहीं लिया, वरन वे केवल हंस दिए। प्रभुपाद को पता था, इन विचारों को पता नहीं, प्रसादी ले लिया उन्होंने। किंतु प्रभुपाद नैरोबी के भक्तों को खराब भोजन बनाने पर नहीं हंसे। जब उन्होंने उनके सामने सफेद मक्के का दलिया परोस दिया तो प्रभुपाद ने उसे सुअर का खाना बताया और सख्त सफेद चनों को घोड़े के लिए उपयुक्त कहा। जो प्रभुपाद जी के लिए कपड़ा तो चुरा लिए और प्रसाद कैसे दे रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ये जो प्रसाद आप दे रहे हैं ये घोड़े और सुअर के खाना है। तब अमेरिका से आया एक काला भक्त हरिकृपा रसाई घर में गया। उसने कुछ सब्जियां उबाली और उनमें कोई मसाला मिलाए बिना ही प्रभुपाद को परोस दिया। प्रभुपाद ने उससे कुत्ते का खाना कहा। उन्होंने हरि कृपा से कहा, तुम अभी भी एक अशिक्षित अफ्रीकी हो। और वे अपना भोजन बनाने के लिए स्वयं रसाई घर में गए। देखिए, ये विश्व के आचार्य, वर्ल्ड के आचार्य हैं, जो इतने बड़े विश्व में संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संस्था की स्थापना की, तो उनको किस प्रकार कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम कभी प्रीचिंग में जाते हैं, थोड़े बहुत गड़बड़ हो जाते हैं तो क्या क्या हो जाते हैं, इतने तकलीफ। कोई स्नान करके आए कपड़ा ना मिले, दूसरे ने की पहन ले, और खाने के लिए क्या क्या खाना देते हैं प्रभुपाद स्वयं बताते हैं, कोई कुत्ते घोड़े सुअर उसी प्रकार के खाना, वो बेचारे को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उसको सामना करके उन्होंने स्वयं गए किचन में खाना बनाने के लिए। लगभग 1 दर्जन भक्त प्रभुपाद के साथ जुड़ गए। किसी को पता नहीं था खाना क्या करें, ऐसे ऐसे स्थिति में ट्रेनिंग दी। 12 डिवोटी थे, किसी को खाना बनाना नहीं आता था। अब प्रभुपाद जी ने खाना बनाएंगे अपने लिए, उनके लिए भी शायद बनाना पड़ेगा उनको। चावल सब्जी और चपातियों का पूरा भोजन बनाने में लगे थे। उन्होंने पर्याप्त भोजन बनाया ताकि हर भक्त खा सके। भोजन खाकर सभी संतुष्ट हुए, किंतु खराब भोजन और कपड़े की चोरी, ये दोनों बात सप्ताह भर के लिए प्रभुपाद की नैरोबी अधिवास की समस्या बनी रही। ब्रह्मानंद स्वामी ने देखा कि प्रभुपाद अधिकांशतः बंबई परियोजना के विचार में डूबे रहते थे। प्रभुपाद जी ने भले कहीं रहते थे, उनका चिंता हमेशा बंबई के लिए रहता था, हमेशा उसके बारे में सोचते थे। और उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा, मेरे आने का एकमात्र कारण आपको उस परियोजना में लगाना है। एक बार उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी से पूछा, भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, कलकत्ता। प्रभुपाद जी ने पूछते थे, इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट सिटी कौन सा है? तो ब्रह्मानंद से बोले, कलकत्ता है। कलकत्ता, प्रभुपाद ने रुखाई से उन्हें देखते हुए किया, क्या आपको मालूम नहीं कि बम्बे का स्थान पहला है? प्रभुपाद नाराज बोले, नहीं, कलकत्ता नहीं है, नंबर वन सिटी इन इंडिया कौन सा है? मुंबई है। दिल्ली का दूसरा और कलकत्ता का स्थान तीसरा है। ये प्रभुपाद जी के कैलकुलेशन है, बम्बई इज फर्स्ट, सेकंड दिल्ली, कलकत्ता थर्ड। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को प्रोत्साहित किया कि वे उनके साथ वापस चले और बम्बई परियोजना का भार संभाले। उन्होंने कहा कि इस्कन में यह बम्बई परियोजना बिजोड़ होगी, उसके अंतर्गत एक शानदार मंदिर में धर्म और संस्कृति का सम्मिलन होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय होटल होगा, थिएटर होगा और छोटा नुमायस घर होगा। प्रभुपाद की बलवती इच्छा को देखकर ब्रह्मानंद महाराज सहमत हो गए कि वे किसी तरह नैरोबी का कार्यभार औरों को सौंपेंगे और बम्बई परियोजना में स्वामी जी की मदद करेंगे। प्रभुपाद जी बम्बई के लिए ये पूरा प्लान बना के रखे थे हमारे मन में कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। एक अन्य रूप में भी प्रभुपाद की नैरोबी यात्रा उनकी बम्बई योजना से संबंधित हो गई। जब ब्रह्मानंद स्वामी और च्यवन ने प्रभुपाद को नैरोबी हिल्टन भवन दिखाया तो दो गंबदे वाला एक आधुनिक भवन था, तो प्रभुपाद को उसकी डिजाइन बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे बम्बई होटल और मंदिर के लिए अपने वस्तु शिल्पी को देना चाहा। ये दो टावर है, ये नैरोबी से प्रभुपाद ने लेकर इस टूर में हिल्टन होटल के। प्रभुपाद ब्रह्मानंद स्वामी भागवत और अफ्रीकी भक्त नैरोबी की सार्वजनिक पार्क में टहल रहे थे। प्रभुपाद से परिचित कराए जाने पर अफ्रीकी भक्त ने पूछा था, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं विवाह कर सकता हूं? प्रभुपाद ने कहा, हाँ हाँ। लड़के ने कहना जारी रखा, किंतु प्रभुपाद, यदि कोई मेरी ज्ञाति में विवाह करना चाहे तो उसे लड़की के पिता को धन देना पड़ता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह वैदिक रीति के बिल्कुल विपरीत है कि इसमें लड़की का पिता अपने दामाद को दहेज देता है। वहां अफ्रीका में बोलते हैं, उनका रीति था, अगर शादी करना हो लड़का को दहेज देना पड़ता है, उन्हें लड़की के पिता को देना पड़ेगा। प्रभुपाद बोले, ये तो उल्टा है, तो क्या आप मुझे धन देंगे जब मुझे पत्नी चाहिए होगी? प्रभुपाद जी को पूछ रहा है वो लड़का क्योंकि इस समय मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपकी सेवा में हूं, जब मैं पत्नी चाहूंगा तो क्या आप मुझे धन देंगे? प्रभुपाद ने सिर हिलाया और बोले, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो कि तुम्हें पत्नी मिलेगी या तुम्हें धन मिलेगा, यह मिलेगा या वह मिलेगा, बाद में जब तुम्हारी शादी का समय हो जाएगा तो मैं एक अमेरिकी लड़की ला दूंगा और तुम उससे ब्याह कर लेना। नैरोबी के अपने छोटे नए मंदिर में प्रभुपाद जिस ओर दिखते वहीं उन्हें नई तरह के शिष्य और व्यवस्था की कमियां दिखाई देती। ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करते ही उन्हें कमरे में चारों ओर बिखरी हुई पुस्तकें, तख्तियां, रंग के डिब्बे दिखाई दिए। जब उन्होंने कहा कि चीजें सफाई और व्यवस्थित ढंग से रखी जानी चाहिए तो मंदिर के व्यवस्थापक हरिकृपा ने उत्तर दिया, प्रभुपाद, मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं किंतु ये लड़के मेरी बात नहीं सुनते। प्रभुपाद ने झुककर लकड़ी के कुछ टुकड़े उठा लिए और बोले, यदि ये लड़के नहीं करते तो आपको करना चाहिए, इन टुकड़ों को वहां रखिए। और प्रभुपाद ने वहां उपस्थित सभी पुरुषों को काम पर लगा दिया। 5 मिनट में कमरा साफ हो गया। तो प्रभुपाद जी ने बोले अगर लड़के बात नहीं सुनते तो खुद को करना चाहिए, खुद करने से फिर आपके साथ उसने। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं किए, कुछ लकड़ी अगर उठाए घर से तो प्रेसिडेंट और जितने डिप्टी सब लग गए, कुछ मिनट में पूरा घर साफ हो गया। नैरोबी के सिटी स्टेडियम में संपन्न वर्ल्ड हरे कृष्णा मूवमेंट फेस्टिवल, विश्व हरे कृष्णा आंदोलन उत्सव सफल भी था और असफल भी। यद्यपि ब्रह्मानंद स्वामी ने उनके उच्च पदस्थ सहकारी अधिकारियों और राजनीतियों को आमंत्रित किया था और उनमें से बहुतों ने सम्मिलित होने का वचन भी दिया था, किंतु केनिया के शिक्षा निर्देशक श्रीमान बाई कोमर के अतिरिक्त कोई नहीं आया था, किंतु कई हजार लोगों की श्रोता मंडली कीर्तन में उपस्थित रही। उसने प्रभुपाद के व्याख्यान सुने और प्रसाद ग्रहण किया। यद्यपि भक्तों ने केनिया के प्रमुख नागरिकों को कृष्ण की महिमा को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु उत्सव के सम्मानित अतिथि श्रीमान कोमर ने इस अवसर का उपयोग केनिया की प्रशंसा करने में किया। तो भी उन्होंने प्रभुपाद और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की भरपूर प्रशंसा की। भगवद गीता के संबंध में उन्होंने कहा, आपके विद्वान संस्थापक ने इस महान ग्रंथ को अपनी विद्वतापूर्ण टीका के साथ अंग्रेजी परंपरा में उपलब्ध करा दिया है। श्रील प्रभुपाद ने नैरोबी तथा उनके आसपास के स्थानों में अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उन्होंने अपने नैरोबी के शिष्यों को बताया कि अफ्रीका में प्रचार करते समय उन्हें सार्वजनिक कीर्तन करके हरे कृष्ण मंत्र गाने पर जोर देना चाहिए। तो प्रभुपाद ने नैरोबी में जब गए तो स्टेज प्रोग्राम किए। यद्यपि जैसा एक्सपेक्ट किया जाता था ऐसा नहीं हुआ, बड़े बड़े लोग कोई नहीं आए, लेकिन कुछ जो देखने वाले लोग बहुत आए थे, अफ्रीकी स्टूडेंट्स, और कीर्तन किए और प्रसाद लिए। तो प्रभुपाद जी ने तभी सभी प्रचारक को अफ्रीका में ये सलाह दी थी कि अफ्रीका में प्रचार करने का असली तरीका है कीर्तन और प्रसाद। भगवान चैतन्य दर्शन पर वार्ता केवल सनातन और रूप गोस्वामी जैसे विद्वान लोगों के साथ करते थे, सामान्य जनों के साथ कभी नहीं। उन्होंने कहा, केवल हरे कृष्ण का गान करो, यह लोगों को भाएगा। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु अगर फिलोसॉफी का डिस्कशन करते हैं तो केवल रूप सनातन के साथ करते थे, बाकी जनरल पब्लिक में केवल कीर्तन करते थे। तो इसलिए आपके लोग कीर्तन भी करो। श्रील प्रभुपाद ने राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की और नैरोबी के मंदिर का नाम रखा किरात शुद्धि, जिसका तात्पर्य था आदिवासियों को शुद्ध करने का स्थान। एक दिन स्वामी जी विग्रह स्थापना के कुछ समय बाद मंदिर के कक्ष में गए तो उन्हें यह देखकर धक्का लगा कि विग्रह आसन के मध्य में अपने स्थापन नहीं है, अल्टर से डीटी गायब। ऊपर जाकर देखते हैं टेम्पल अल्टर में डीटी नहीं है। कृष्ण आसन को जाने वाली सीढ़ी के सबसे निचले कदम के पास एकदम बाईं ओर खड़े थे और राधा रानी एकदम दाईं ओर थी, सीढ़ी से उतर रहे थे, डीटी रखी हुई थी। प्रभुपाद ने ऊंची आवाज में पूछा, यह किसने किया? भागवत भागता हुआ मंदिर के कक्ष में आया और वह भी चकित था। भागवत जो भक्त थे आके आश्चर्य देखे। प्रभुपाद ने पूछा, राधा और कृष्ण को 10 मील की दूरी पर किसने रख दिया? क्या तुम इन बातों को नहीं जानते? मुझे तुम लोगों को कितनी बार बताना पड़ेगा? एकाएक भूत भावन वहां आ गया और उसे स्वीकार किया कि अपराधी वही था। प्रभुपाद ने पूछा, ये विग्रह इतने दूर दूर क्यों है? भूत पावन बोला, प्रभुपाद मैं नहीं जानता, लगता है कि मैं भूल गया, मुझे उत्सव में जाने की बड़ी जल्दी थी। प्रभुपाद ने कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें सड़क में रख देना चाहिए? भूत भावन सहम गया, उससे उत्तर नहीं बन पड़ा। प्रभुपाद शांत हुए, उन्होंने कहा, इन्हें उठाओ और ठीक से एक दूसरे के निकट स्थापित करो। इनके बीच 3 इंच से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। अब इसे बढ़िया ढंग से करो। 1 सप्ताह बाद प्रभुपाद ने नैरोबी से विदा ली और वे बम्बे लौटे। वे वहां ब्रह्मानंद स्वामी को अपने साथ लाने के लिए गए थे और उनका कार्य पूरा हो गया था। प्रभुपाद ने कहा, जब तक आप यहाँ का कार्यभार लेने को तैयार न होते तब तक मैं आगे न बढ़ता और भुगतान न करता। अब यह निश्चित हो गया है। प्रभुपाद को अब भी नई आशा दिखाई देने लगी थी। तो प्रभुपाद जी ने इसे पता चलता है कि किस प्रकार के जिसे नैरोबी गए, नैरोबी के पहुंचने से गड़बड़ी कोई आई नहीं थी एयरपोर्ट में, गए तो ब्रह्मानंद स्वामी जो इंचार्ज थे उनको ही पता नहीं था, और किस प्रकार खाद्य पदार्थ मिला, कपड़ा चोरी हो जा रहा है, जो स्टेज प्रोग्राम में किस प्रकार कोई नहीं आए और डीटी की अल्टर से उठा ले जा रहे हैं, इसी प्रकार स्थिति में भी प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को वहां से ले आए। किसके लिए लाए? बम्बई के लिए लाए। मैंने कितने इम्पोर्टेंट बम्बई को देते थे। जब यहां मंदिर प्रतिष्ठा किए, डीटी लेके प्रतिष्ठा किए, इसी हाल है। किसी प्रकार कोई ट्रेंड ऑफ डिवोटी नहीं है, लेकिन फिर भी बोले किरात शुद्धि आदिवासी जैसे तैसे चलाएंगे, हमको बम्बई को ठीक करना है। पूरे इंटरनेशनल स्तर में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्व देते थे बम्बई को, इसलिए वहां से इसी स्थिति में भी ब्रह्मानंद को लेकर बम्बई आ गए। प्रभुपाद ने कल्पना की कि उनकी बम्बई परियोजना इस्कन के अंतर्गत और भारत के सभी मंदिरों के मध्य असाधारण होगी। परियोजना के अनेक विस्तार उनके दिमाग में आ चुके थे, किंतु उनको कार्यान्वित करने के लिए योग्य शिष्य की आवश्यकता थी। वे अब भी इस्कन के एकाकी नेता थे और कृष्ण भवनामृत के नए आयामों के वास्तविकता में बदलने के लिए बराबर आगे बढ़ रहे थे। सिंगल हैंडेड चला रहे थे उसको भी। उनके शिष्य उनके साथ थे, किंतु नेतृत्व प्रदान करने का काम तो उन्हीं का सर पर था। इस्कन को विभिन्न परियोजनाओं तक के लिए भी जब अपने शिष्यों से वे नेता खोजते थे तो कभी कभी उनके शिष्य जमींदारी लेने को तैयार नहीं होते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद को उस बंगाली कहावत में वर्णित मनोवृत्ति के साथ नैरोबी जाना पड़ा था, जिसे वे अक्सर सुनाया करते थे, यदि तुम कोई कार्य पूरा करना चाहते हो तो उसे अपने हाथ से करो। इसलिए वे अपने हाथ से ब्रह्मानंद स्वामी को नैरोबी से बम्बई ले आए थे। इसके साथ ही उन्होंने नैरोबी के शिष्यों और वहां के जनसाधारण को भी लाभान्वित किया था। प्रभुपाद ने श्रीमान एन से भेंट की और पुनः कहा कि 50,000 रूपये की दूसरी किस्ती का भुगतान होते ही वे भूखंड में चले जाना चाहते थे। श्रीमान एन समझौते पर अटल थे और प्रभुपाद ने मामला कानूनी कार्यवाही के लिए अपने वकील सी डी को सौंप दिया। यद्यपि प्रभुपाद प्रबंधक के सारे निर्णय स्वयं ले रहे थे, किंतु वे चाहते थे कि इन व्यवहारिक मामलों में उनके जीवीसी सचिव भी जमींदारी लें। वे अपनी शक्ति को लिखने और अनुवाद करने के काम में लगाना श्रेष्ठ कर समझ रहे थे। उन्होंने अपने सचिव श्याम सुंदर से कहा, यदि तुम जीवीसी लोग हर काम ढंग से करने लगे तो मेरे दिमाग पर जोर ना पड़े और मैं अपना समय आगे की पुस्तक लिखने में लगाऊं। मैं तुम लोगों के वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सारे ग्रंथ दे सकता हूं। हमारे संप्रदाय में गोस्वामी द्वारा लिखे अनेकानेक भक्ति ग्रंथ है। इन प्रशासनिक कार्यों में मेरा बहुत समय लग रहा है। यह समय मैं दर्शन की बातों में करने में लगाना चाहता हूं। इन कार्यों से मेरे दिमाग पर रात दिन बोझ रहता है। इनके कारण मेरे असली कार्य की उपेक्षा हो रही है। भारतीय परियोजनाओं को स्वयं देखने के अतिरिक्त प्रभुपाद को विश्व के कोने कोने से आए भक्तों के लगभग 1 दर्जन पत्रों के उत्तर देने होते थे। उन्होंने अपने सचिव से पूछा, ये लोग क्यों लिखते रहते हैं और इतने प्रश्न पूछते रहते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, भक्त लोग आपसे व्यक्तिगत रूप से इसलिए पूछते हैं कि जीबीसी के लोग हमेशा सही उत्तर नहीं जानते। यदि प्रभुपाद जी ने जीबीसी बनाए थे उनको हेल्प करने के लिए, लेकिन वे लोग इतने मैच्योर्ड नहीं थे, तो इसलिए सारे डिवोटी प्रभुपाद जी को लेटर लिखते थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे अब तक सभी कुछ जान चुके हैं, मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है, यदि वो लोग उत्तर नहीं जानते तो उन्हें मेरी पुस्तक में पा सकते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे दर्शन में लगने दो, सारा दिन पत्रों को पढ़ना, धंधे में लगे रहना, सारी रात पत्रों पर हस्ताक्षर करते रहना, यह सब ठीक नहीं है। अब जीबीसी के लोग हर काम कर सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी भी यद्यपि पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करना चाहते थे, लेकिन अपने समय को अपने अवस्था को भी सही उपयोग करना चाहते थे। बुढ़ेपे में आकर के वो चाहते थे केवल शास्त्र पढ़ें, शास्त्र की चर्चा करें, बात करें, और ये मैनेजमेंट के मामले में उसको नहीं पढ़ना चाहिए। सभी को यही करना चाहिए था, प्रभुपाद अपने आचरण से यही सिखाते हैं, किंतु यह संभव नहीं था। प्रभुपाद को ज्यों ही लगता कि उनका कोई शिष्य ठगा जा रहा है तो वे तुरंत हस्तक्षेप करते थे, और उनके शिष्य महत्वपूर्ण कार्य और प्रबंध संबंधी निर्णय के लिए उनको लगातार लिखते रहते। प्रभुपाद उन्हें निरुत्साहित करना नहीं चाहते। अवकाश ग्रहण करने और एकमात्र साहित्यिक कार्य करने की उनकी इच्छा निरंतर बनी रही, किंतु वह केवल इच्छा मात्र प्रतीत होती थी, एक सपना। यदि इस्कन को विकास करना था तो उनके अवकाश ग्रहण करने की संभावना अति अल्प थी। इस्कन को एस्टेब्लिश करने के लिए अभी वो अपने काम नहीं कर सकते हैं, उनको फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और उन्होंने ये सारे कष्ट उठा करके उनको अपने स्वयं संभाल रहे थे। श्रीमान एन से मिलने के बाद प्रभुपाद मद्रास में पंच दिवसीय पंडाल कार्यक्रम के लिए दक्षिण भारत जाने की तैयारी में लग गए। उनकी यात्रा के कार्यक्रम में कलकत्ता, मायापुर, वृंदावन भी थे। बंबई से प्रस्थान करने की तैयारी में लगे प्रभुपाद के मन में प्रसन्नता थी कि इस्कन को जुहू में नई जायदाद शीघ्र प्राप्त हो जाएगी, और वे प्राय अपनी योजनाएं के बारे में बातें करते थे। इस्कन एक विस्मयकारी मंदिर बनाएगा और कृष्ण भक्तों के एक सहकारी गृह निर्माण संघ की स्थापना करेगा, जो इस्कन का प्रथम नगर होगा। इस्कन के इस ऊंचे सहराज्य में सहमत समाहत लोग अपने आवास खरीदेंगे। भक्तों को ऐसे परिसर का विकास और संचालन करने के लिए विशेषज्ञ बनना पड़ेगा, और यहाँ सफल होने के बाद यही नमूना वे अन्य नगरों में लागू करेंगे। व्यवसायी और पेशावर श्रमिक इस सहकारी संघ के अंतर्गत अपने परिवारों के साथ भक्त के रूप में रहेंगे और अपने बच्चों को इस्कन स्कूल में भेजेंगे। रूपा जी का इस्कन बनाने से पहले बहुत बड़ा प्लानिंग था, पूरा इस्कन के सोसाइटी, स्कूल। प्रभुपाद बार बार होली हॉलीडे इन तरह का हॉलीडे इन की तरह का एक होटल बनाने की बात करते थे, जो विदेशियों और पर्यटक व्यवसायों के लिए उपयुक्त होगा और जिसके एक मंजिल इस्कन के आजीवन सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगी, जहां वे निःशुल्क आवास सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, आहार गृह की व्यवस्था विशेषज्ञ ब्राह्मण रसाइयों के साथ में होगी। विशेषज्ञ ब्राह्मण रसाइया उनके हाथ में रसाई होगी, जो दर्जनों प्रकार के स्वादिष्ट प्रसाद तैयार करेंगे। राधा रास बिहारी को दिन में 52 नैवेद्य चढ़ेगी और प्रसाद का वितरण आवासियों और अभ्यागतों को होगा। कार्य का प्रवर्तन ठीक दिशा में हो, इसके लिए स्वामी जी ने भक्तों को आदेश दिया कि वे नए भूखंड में इस दिवसीय सार्वजनिक उत्सव का आयोजन तुरंत करें। पहला काम यह था कि ब्रह्मानंद स्वामी करारनामा के अनुसार शेष राशि का भुगतान करके सभी भक्तों को और राधा रास बिहारी विग्रहों के साथ भूमिखंड में पहुंच जाए, तब वे वहां पंडाल के लिए एक बड़ा शमियाना लगाए और बंबई, कलकत्ता और दिल्ली में पूर्ववत किए गए कार्यक्रम की तरह पूरा कार्यक्रम आयोजित करे। प्रभुपाद चाहते थे कि जब वे दो सप्ताह बाद लौटे तो यह सब तैयारी पूरी हो जाए। तो प्रभुपाद ने किसी भी प्रकार से डिबुटली को ला करके इस जमीन में रख करके कोई टेंट डाल करके और विग्रह को स्थापना करके कार्यक्रम चलाना चाहते थे किसी प्रकार से। प्रभुपाद जी ने जब ये सब कार्यक्रम करते उनके साथ सहयोगी केवल कुछ विदेशी शिष्य थे जिनका भारत का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके द्वारा काम कराए। यद्यपि जैसा कि प्रभुपाद ने कभी कभी उल्लेख करते थे दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति सर्वाधिक अपने मूल रूप में है, किंतु कई वर्ष से वे उधर जा नहीं पाए थे। शंकर, रामानुज, माध्व आदि अधिकतर महान आचार्य दक्षिण भारत में हुए थे और महाप्रभु चैतन्य ने भी अपनी यात्राओं के दौरान दक्षिण भारत का विशेष रूप से अनुकूल पाया था। नवंबर 1971 में दिल्ली में हरे कृष्ण पंडाल उत्सव के ठीक बाद और प्रभुपाद की अपने शिष्यों के साथ वृंदावन की पहली यात्रा के पूर्व संध्या में अच्युतानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और गिरिराज ने स्वेच्छा से मद्रास जाने और वहां से प्रभुपाद के धर्म उपदेश के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए सोचा था। जब अच्युतानंद स्वामी ने प्रभुपाद को इस योजना के बारे में सूचित किया तो प्रभुपाद ने पूछा, ओहो आप हमारे साथ वृंदावन नहीं जा रहे हैं? अच्युतानंद स्वामी ने उत्तर दिया, इस्कन ही वृंदावन है। प्रभुपाद ने कहा था, हाँ मेरे गुरु महाराज ऐसा ही सोचा करते थे। गिरिराज ने पूछा, किंतु आप हमसे क्या कराना चाहते हैं, अधिक अच्छी सेवा कौन सी है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, मैं मद्रास में पंडाल लगवाना चाहता हूँ, वह अधिक प्रसन्नतादायक होगा। अब मद्रास फरवरी 11, 1972, अपने 20 शिष्यों के साथ प्रभुपाद मद्रास पहुंचे और सड़कों पर परेड करने वाले एक जुलूस में फौरन सम्मिलित हो गए। जुलूस में आगे आगे एक अलंकृत हाथी, बैंड और उनके पीछे कीर्तन करते भक्त, प्रभुपाद फूलों से सजी एक पुरानी अमेरिकन लोमिसिन गाड़ी में थे। प्रभुपाद एक मद्रासी व्यवसायी श्रीमान बालू के साथ अतिथि बनकर ठहरे। 3 रात प्रभुपाद ने 5,000 श्रोताओं से भरे विशाल हॉल में अंग्रेजी में व्याख्यान दिए। एक शाम उन्होंने चैतन्य चरितामृत से एक निरक्षर दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की कहानी सुनाई, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रगाढ़ गुरु भक्ति और भगवद गीता के प्रति प्रेम के लिए मान्यता दी थी। दूसरे दिन और उसके बाद से प्रतिदिन मद्रास के 2 प्रमुख समाचार पत्रों से, एक दी हिंदू प्रभुपाद के व्याख्यान का संक्षिप्त रूप से प्रकाशित करता रहा। दूसरे प्रमुख समाचार पत्र में भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के मद्रास आगमन और अपने पाश्चात्य अनुयायियों के साथ जुलूस में सम्मिलित होने का सामान्य विवरण ही प्रकाशित हुआ। 3 दिवसीय बृहत कार्यक्रम के बाद गिने चुने लोगों का सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन मद्रास के चीफ जस्टिस श्रीमान के वीर स्वामी ने किया था। इस समारोह में न्यायाधीश, वकील और नगर के प्रमुख व्यवसायी सम्मिलित हुए। उस समय खुले मंडप में कई हजार लोग एकत्र थे। जब प्रभुपाद ने वृंदावन के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में बताया, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आपने महत्वपूर्ण सरकारी पदों का परित्याग कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद सभा में उपस्थित मद्रास के सभी नेताओं से कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित होने का अनुरोध करते थे। तो प्रभुपाद को जब भी चांस मिलता था प्रीचिंग करते थे। जब भी देखे कि बड़े बड़े लीडर लोग आकर के स्टेज प्रोग्राम में भाग लिए, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उदाहरण दिए कि उन्होंने किस प्रकार बड़े बड़े मंत्री पद में थे और कृष्ण भावना प्रचार के लिए अपने पद को त्याग करके आकर के इसमें शामिल हुए। तो इसमें इंडायरेक्टली उनको बोलते थे, आप लोग भी सब छोड़ करके इसी में लग जाइए। प्रभुपाद को ज्ञात था कि यद्यपि उनकी श्रोता मंडली का अभाव उनके प्रति आदरपूर्ण था, किंतु उसके सभी लोग निर्व्यक्तिकता में पूरी तरह डूबे थे। उनका गहरा विश्वास था कि निर्विशेष या निराकार ब्रह्म ही परमात्मा है और सभी हिंदू देवता समान रूप से उस परम सत्ता के अवतार है। प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान का अंत श्रोताओं से इस अनुरोध के साथ किया कि वे सब कृष्ण को ही परमात्मा मानो। उन्होंने कहा, मेरे साथ दोहराइए कि कृष्ण ही परमात्मा है। उनका व्याख्यान इतना आग्रहपूर्ण और विनम्र था कि श्रोता मंडली के कुछ सदस्यों ने उच्च स्वर में वस्तुत दोहराया, कृष्ण ही परमात्मा है। दी हिंदू के संपादक और प्रकाशक श्रीमान कस्तूरी श्रोता मंडली में उपस्थित थे और दूसरे दिन के संस्करण में उन्होंने प्रभुपाद के भाषण का सारांश पूरे विस्तार से प्रकाशित किया। प्रभुपाद जी ने भारत में जब प्रचार करने आए तो भारत में सबसे ज्यादा धर्म संबंधी जो जानकारी था दक्षिण भारत में था, ज्यादा रिचुअल्स वही लोग फॉलो करते थे। लेकिन उन लोग में भी अधिकांश लोगों को पता नहीं था कि कृष्ण ही भगवान है। वो सब बोलते थे कि भगवान तो निराकार है, निर्विशेष निर्गुण है और सारे देवता भगवान के अवतार, भगवान के समान है। प्रभुपाद जी ने इस बात को बहुत बुरी तरह से खंडन करके सभा में सबको रिक्वेस्ट करके बोला था कि कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्ण ही भगवान है, यही बात को दोहराकर बोलते थे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने शुरुआत में कितने प्रयास किए हैं स्थापना करने के लिए। विदेश में इसका स्थापना करना बहुत इजी था प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी शुरू किए, क्योंकि वो लोग उसका कारण बताते हैं कि जैसे कोई प्रिंटेड पेपर है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप खुद लिखेंगे वो दिखाई नहीं पड़ेगा, समझो पढ़ाई नहीं जाएगा। प्लेन पेपर हो उसमें कुछ भी लिखो पढ़ाई जाएगा। तो विदेशी के जो संस्कार था वो सब क्लीन स्लेट था, क्लीन पेपर था, उसमें कुछ था नहीं, कौन भगवान क्या कुछ भी नहीं पता था, देवी देवता कुछ। तो जो प्रभुपाद जी ने सिखाए आज इट इज उसी को समझ ली और उसको करने लगे। अब भारत में तो पहले से खिचड़ी पक्के बैठा था, सारे सबसे ज्यादा साउथ इंडिया के लोग बड़े चढ़ते, लेकिन उनमें भी ईश्वर का विचार था। तो कितने परिश्रम उनको भारत में करना पड़ा और इसलिए भारत में भी सफल हो पाए। पहले ही प्रभुपाद जी ने भारत में किए थे प्रचार, विदेश जाने से पहले उन्होंने झांसी में जा करके अपने लीग ऑफ डिवोटीज भी रजिस्ट्री किए थे, सोसाइटी बनाए, एक भक्त को दीक्षा भी दिए थे, उसके नाम में आचार्य दिए थे। तो इतने प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भारत में लोग तो इसी को कोई चाहते नहीं थे, बहुत कम लोग चाहते थे अध्यात्म को, धर्म को, सभी विदेशी चीज को चाहते थे। इतने विदेशी के पीछे पड़े थे, विदेशी खाना, विदेशी पोशाक, विदेशी बोलना, सब कुछ वेस्टर्नाइज इम्पोर्टेड होना चाहते थे। तो इसलिए शायद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने उनको दिए थे ये आदेश। तो प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार कर करके कितने गीता के लेक्चर दिए, स्वयं कितने प्रयास किए, असफल रहे, लेकिन विदेश में जा करके प्रचार करके कष्ट तो हुआ, लेकिन फिर भी प्रचार करके जब 20-30 विदेशी लोगों को साथ में लेकर आए और वही हरे कृष्ण मंत्र, वही भगवान की पूजा, वही तुलसी पूजा, वही कीर्तन, वही सिस्टम जो हमारे हजारों हजारों साल पुराने से भारतवर्ष में सभी मठ मंदिर में था, जिसको लोग भूल चुके थे, उसी को फिर लेकर आए इंग्लिश मीडियम में। रजिस्ट्री कहाँ किए थे? अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी से ये जो भक्ति इम्पोर्टेड भक्ति आया, तो इम्पोर्टेड कृष्ण भक्ति जब आया तो इंडियन तो सब चीज इम्पोर्टेड चाहते थे, हर चीज इम्पोर्टेड चाहते, तो ये इम्पोर्टेड भक्ति को लिए। तो इसलिए खूब जोर से प्रचार हो रहा है। आज काल भी इंडियन के जो नवयुवक है, स्टूडेंट, वो भी इम्पोर्टेड भक्ति को चाहते हैं। जब भी हमारा इंडियन भक्ति बहुत पुराना अभी भी है, लेकिन बोलते हैं कि वो ये इम्पोर्टेड है, अमेरिका से बन करके आया, चीज वही है लेकिन अमेरिकन स्टाम्प बन करके आया, अंग्रेजी भाषा में आया, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्रभुपाद जी ने विदेशियों के साथ में लेकर जो प्रचार शुरू किए, इतने सफल रहा, अभी मद्रास, दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, हर जगह में हजारों संख्या में लोग आते थे। इसको सुनने के लिए नहीं आते थे कीर्तन वीर्तन, वो किस लिए आते थे? हाँ, विदेशी व्हाइट एलिफेंट, प्रभुपाद से बोले व्हाइट एलिफेंट, उन्हीं को लेकर के उन्होंने सारे प्रचार किए। वही उनका सबसे बड़ा सफलता की कुंजी रहा। लेकिन धीरे धीरे अब लोग समझने लगे, अब नहीं, अब इस सच्चाई के ऊपर आने लगे। लेकिन शुरुआत इस प्रकार से किएगा, विदेश में प्रचार किए, विदेश में प्रभुपाद सफल हुए किस प्रकार, कोई इंडियन तो था नहीं कि व्हाइट एलिफेंट ब्लैक एलिफेंट कुछ था नहीं, विदेश में प्रभुपाद जी के प्रचार का सफलता रहा प्रसाद, इस्कन बुलेट, गुलाब जामुन और हलवा, प्योर घी का हलवा और गुलाब जामुन, इसी से उनका बोल्ड आउट हो गए सारे, दिमाग खराब हो गया, उन लोग का कुछ खाए नहीं थे, सब जाने दो यही चीज मिले हमको, फिलोसफी भी इसलिए सुनने लगे, ये सब हरे कृष्ण मंत्र जप करना नियम नहीं सब मानने लगे, इसी दोनों के हलवा और गुलाब जामुन के सामने सब झुक गया उनका, सारे उनका टेक्निक, सारे उनके हाईटेक, उनके एडवांसमेंट, ये दो चीज से उन्होंने कर लिए, और इंडिया में आए और वेस्टर्न डिबोटी की लेकर आए, वो इंडियन को जीते। तो इस प्रकार ईस्ट और वेस्ट को दोनों जगह में उन्होंने प्रभुपाद ने बड़े चालाकी से, बड़े चतुरता से उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत को प्रचार किए, जहां के जिस रूप से, जिस प्रकार से प्रचार करने का आवश्यकता है, प्रभुपाद सो प्रैक्टिकल उसको इसी प्रकार यूज करते थे। इस प्रकार करके उन्होंने सफल हुए, बहुत कम समय में उन्होंने विदेश तो गए थे केवल 65 में गए, 66 अगस्त में, अगस्त 12 आई थिंक, सबसे पहले इस्कन का जो रजिस्ट्रेशन उनका नियम स्थापित हुआ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और प्रभुपाद ने 66 में रजिस्ट्री किए सोसाइटी को और 77 में गोलकधाम चले गए। ओनली 11 इयर्स, 10-11 साल में पूरे विश्व में ये चांचल्य सृष्टि कर दिए, 108 टेम्पल क्या क्या नहीं कर दिया 10 साल में, एक बार लास्ट उम्र में, बुढ़ापे उम्र में, केवल 10 साल में इतने, इसी को कहते हैं कि वो भगवान के शक्ति से शक्ति समन्वित थे, सत्यावश्य अवतार माना जाता, क्योंकि साधारण काम नहीं है, इतने प्रगाढ़ भगवान को विश्वास था और इतने चतुराई से उन्होंने काम को हैंडल किए, सिंगल हैंडली बूढ़े होकर की, यहाँ के जो मिस्टर एन के बाद जो कहते हैं, तो कितने एक्सपर्ट था उन्होंने, ये इंडियन पॉलिटिकल लोगों के साथ हाथ रख के, वकीलों के साथ कितने एक्सपर्ट था, लेकिन प्रभुपाद ने उसको मात कर दिया, वो कुछ विदेशियों के हाथ में लेकर के जो कुछ भी नहीं जानते थे बेचारे, इतने सादे सीधे थे, लेकिन उनका दिमाग चलता था, इस प्रकार से हैंडल करके आज जो के इस भव्य मंदिर में आप बैठ करके करते हैं, लेकिन उनके पीछे अगर सोचा जाए, श्रील प्रभुपाद जी ने बूढ़े उम्र में कितने चिंता, कितने शक्ति, कितने अपने प्रयास को डाल रखे थे, अगर उसको अगर हम सोचे, थोड़ा मन में विचार करें, तो हमको लगेगा हम जो भी कुछ कर रहे हैं उनके प्रयास, उनके विचार का 1% भी नहीं है, कितने उनके लिए करना चाहिए, उन्होंने हम लोग के लिए क्या क्या नहीं किया था उनके बूढ़े उम्र में, कितने बार देश विदेश दौड़ दौड़ करके पूरे इम्पोर्टेंस देते थे इस जीव में, इस मंदिर को स्थापना करके इस प्रकार करने के लिए कई समस्या का, कठिनाई का सामना किए, आज हम उसका अब यूज मिस यूज जो भी करो, हम उसके सुविधा को ले रहे हैं, लेकिन सुविधा लेकर के अगर सचमुच, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक कृतज्ञ, एक कृतघ्न, सचमुच अगर कृतज्ञ जो होते हैं तो उनको कृतज्ञता किस प्रकार उनको प्रकट करना चाहिए प्रभुपाद जी के प्रति, क्या उनके लिए करना चाहिए, वो तो उनके जी जान लगा दिए, उनके पास जो व्यक्ति थे उनको भी जी जान लगा करके, चैलेंज लगा करके स्थापना किए, अब हम जो सुविधा को उपलब्ध कर रहे हैं हमको कितना परसेंटेज उनके लिए करना चाहिए, इसको अगर मन में सोचे तो सभी भक्त शायद गंभीर हो जाए, केवल इसी विचार को लाने से, केवल इस्कन बम्बे के इतिहास को पढ़ने से अपने आप गंभीरता आ जाएगा भक्ति में, कि एक व्यक्ति अपने बूढ़े अवस्था में कितने परिश्रम करके उसको किया, और हम मजे से युवक अवस्था में उसको ऐसे ऐस कर रहे हैं, नहीं है ना, नहीं तो उसको सोचने से हमको कितने सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए भक्ति में, वही आशा लेकर तो उन्होंने किए थे कि आगे चल करके ही होगा, इतने बड़े प्रचार केंद्र होगा, सर वर्ल्ड हेडक्वार्टर की आशा रखे थे प्रभुपाद जी ने बम्बई को, तो आप लोगों ने सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस बम्बई मंदिर के आप अंतर्गत भक्त हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने सबसे महत्वपूर्ण दिया था, महत्व दिया था, और इसके लिए आपने सारी योजना, सारे इम्पोर्टेंट शिष्य, सारे इम्पोर्टेंट टाइम और खुद भी यहां मौजूद रह करके उसको किए थे। श्रील प्रभुपाद की, स्वामी भक्तवृंद की, हरे कृष्ण।